शांति। आज है 1999 का प्रातः क्लास। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने, ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, कौन से फूलों की बात है, बाप तो बागवान है, बगीचे वाला है, कौन से फूलों की बात है। बाप तो बागवान है, बगीचे वाला है, सुन बहुत प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे अच्छे फलों के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फूलों के पौधे होते हैं, अच्छे अच्छे फूलों के पेड़ होते हैं, बाग में तो होते हैं ना। लेकिन ये बागवान जड़ बाग का बागवान है या चैतन्य बाग का बागवान है? चैतन्य बाग का बागवान है। तो उसमें फल फूल भी कैसे होते होंगे? चैतन्य फल फूलों की बात है। तो बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि और सब सेंटर्स पर फूल और माली हैं, यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने के लिए। और सेंटर्स पर बाप बागवान नहीं है, लेकिन मधुबन में बाप बैठा हुआ है। जो माली होते हैं वो अच्छे अच्छे फूलों को चुन करके, चैतन्य फूलों को चुन करके बाप बागवान के पास मधुबन में ले जाते हैं। तो यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने के लिए, तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कांटों का जंगल, कांटे और फूल में क्या अंतर होता है? कांटा क्या करता है और फूल क्या करते हैं? फूल खुशबू देता है, खुशनुमा बनाता है, खुशनुमा रहता है, खुशबू फैलाता है, दिव्य गुणों की खुशबू देता है, अच्छे अच्छे गुणों की खुशबू देता है। और कांटा, कांटा चुभता है, दुख देता है। तो चैतन्य जो कांटों का जंगल है, उनका बीज रूप है रावण। तो जो चैतन्य फूल हैं, फूलों का जो बगीचा है, बाग है, उस बाग का बागवान कौन होगा? रावण के मुकाबले
राम।
राम यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, क्या कहा? जितना भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वृक्ष है, उसका बीज तो एक ही बाप है। कौन है? यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर क्या बन जाता है? कांटों का जंगल बन जाता है। तो जो जंगल बन जाता है, उसका कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला कौन है? वो भी कोई जरूर होगा। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। कांटों का जंगल कौन से युग से शुरू होता है? द्वापर युग से। और द्वापर युग से शुरू होते होते कलयुग के अंत तक वो जंगल कांटों का बहुत बढ़ जाता है। दुनिया में कितने कांटे हो जाते हैं? संख्या है ना, 500-700 करोड़। मनुष्य आत्मा रूपी जितने भी मनुष्य हैं, वो सब क्या बन जाते हैं? सब कांटे बन जाते हैं। तो कांटे के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला भी जरूर कोई होगा, वो है राम बाप। फूलों के बगीचे से कांटों का जंगल बनाने वाला है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना? क्या ये बात ठीक समझाते हैं ना? क्या समझाते हैं? कि दुखदाई कांटों का जंगल बनाने वाला है रावण। रावण माना अनेक मत देने वाला, अनेक सिरों वाला। जिसको ज्यादा सिर होंगे तो मतें भी अनेक प्रकार की देगा। और राम को सिर ही एक है तो मत भी एक ही देता होगा। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, ये तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने, वो तो सब है माली, वो भी अनेक प्रकार के माली है। कौन? जो बगीचे की देखभाल करने वाले माली हैं, अलग अलग सेंटर्स के जो भी देखभाल करने वाले हैं, वो माली हैं अनेक प्रकार के। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। जड़ बगीचे के कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती है, कोई की 1000 रुपया होती है, और कोई की 2000 रुपया। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, है? हाँ, कौन से गार्डन का?
मुगल गार्डन का
माली भी बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। कौन से मुगल गार्डन की बात की? इशारा किसकी तरफ दिया? जड़ मुगल गार्डन की तरफ इशारा दिया या चैतन्य की तरफ? हाँ, बाबा ने मिसाल तो जड़ मुगल गार्डन की ही दी, लेकिन उससे चैतन्य मुगल गार्डन की भी बात क्लियर हो जाती है कि उसका जो मुखिया होगा उसकी भी जरूर पगार बहुत ज्यादा होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। अनेक प्रकार के बगीचे हैं तो अनेक प्रकार के उसमें माली भी हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बनाए देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, ये है बेहद का बगीचा और वो है मुगल गार्डन जो दिल्ली में बना हुआ है उसका है वो है हद का बगीचा। ये है बेहद का बगीचा, एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, क्या रावण से वर्षा नहीं मिलता है? कौन सा वर्षा? वर्षा तो सुख शांति का है, हैं? तो सुख शांति का वर्षा रावण से नहीं मिलता, उसे काय का वर्षा मिलता है? हैं? दुख और अशांति का वर्षा मिलता है। तो दुख और शांति को कोई वर्षा थोड़े ही कहेंगे, बाप का वर्षा थोड़े ही कहेंगे। रावण से वर्षा नहीं मिलता है, वो तो जैसे साप देते हैं। क्या रावण क्या देते हैं? साप देते हैं। रावण जो मत देते हैं वो मत में क्या भरा हुआ है? साप भरा हुआ है। जब शापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं। शापित होने वाला तो दुखी होगा ना, तो जो दुखी होते हैं शापित होते हैं वो सुख देने वाले भगवान को सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सुखदाता। कौन है सुखदाता? वो है। ये क्यों नहीं कहा? बोलने वाला शिव बाबा खुद बोल रहा है, ब्रह्मा के तन में है, माउंट आबू से बोल रहा है ना, तो वो ये क्यों नहीं कहता मैं हूँ सुखदाता? वो है सुखदाता, ऐसे दूर क्यों कर दिया है? किस लिए दूर कर दिया है? हाँ, तो जो ये वाणी चली है 69 से पहले माउंट आबू में, तो उस समय जो वाणी चलाने वाला स्वरूप है वो कोई शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप नहीं था, इसलिए भविष्य की तरफ इशारा कर दिया कि आगे जो परमात्मा पार्ट बजने वाला है वो है बाप अथवा शिव बाबा है, उसको सब याद करते हैं क्योंकि वो है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। क्या ऐसा नहीं कि कभी वो दुख देता है, उसको क्या कहते हैं? सदा शिव, शिव माना कल्याणकारी, माना वो कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता, कोई भी वाचा से भी अकल्याणकारी नहीं बनता, कोई भी कर्म से भी अकल्याणकारी नहीं बनता, सदा सुख देने वाला है। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं, वो भी ख्याल में लाते हैं। क्या आके के फूल बनाते हैं, गुलाब के फूल बनाते हैं, सूरजमुखी के फूल बनाते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं उनों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके बहुत अच्छी हो जाती, तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं, ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं, आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचों को कांटों का जंगल रावण बनाए देता है। फूलों का बगीचा कौन से युग में होता है? सतयुग त्रेता में होता है फूलों का बगीचा है, और द्वापर से आकर के रावण कलयुग के अंत तक कांटों का जंगल बनाए देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं क्या, कि द्वापर कलयुग में कोई ऐसा भी मनुष्य होता है जो सदा सदैव किसी को सुख ही देता हो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी दुख न देता हो? ऐसा द्वापर युग से कलयुग के अंत तक कोई मनुष्य हो सकता है जो मन के संकल्पों से, वाणी से और कर्मेंद्रियों के कर्मों से कभी किसी को दुख न देता हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं, बगीचे के बीच में कांटे थोड़े होते हैं, बगीचे के बीच में जो बगीचा है सतयुग त्रेता में उसमें कांटे थोड़े ही होते हैं क्या, उसमें कांटे नहीं होते, उसमें सब सत्य त्रेता में सब देवी देवताएं होते हैं, देने वाले सुख देने वाले होते हैं, दुख देने वाले कोई होते नहीं है, एक भी कांटा नहीं होता सतयुग में। कहते हैं नारायण कृष्ण का राज्य था और त्रेता में राम का राज्य था, तो जहाँ राम का राज्य का इतना गायन है तो वहाँ कोई दुख देने वाला हो सकता है क्या? वहाँ तो रावण की बात ही नहीं, वहाँ दुखदाई राक्षसों की बात होती नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है, द्वापर युग से रावण का राज्य शुरू होता है, तो द्वापर युग में रावण का राज्य जब शुरू होता है तो पहला मार किस बात से करता है? पापों का जो बाप है, पांच विकार, उन पांच विकारों का बाप है देहाभिमान, और देहाभिमान से शुरुआत होती है दुखों की। तो रावण देहाभिमान में ले आता है, पहले पहले क्या करता है, बिंदु आत्मा को बुलाए देता है। क्या बुलाता है, हैं? जो देवताएं अपन को बिंदु आत्मा समझते हैं और दूसरों को भी बिंदु आत्मा समझते हैं, स्टार समझते हैं, वो स्टार की दृष्टि क्या हो जाती, खत्म हो जाती और देह की दृष्टि शुरू हो जाती है। तो बड़े से बड़ा कांटा देह अभिमान है क्या, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? काम विकार का, क्रोध विकार का नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का। अपने को देह की दृष्टि से देखना और दूसरे को भी देह की दृष्टि से देखना, इसलिए क्या बोला आपने वाणी में, कोई भी प्रकार का देह अभिमान दूसरे का अपमान जरूर करेगा। 1999 की वाणी का दूसरा पेज, बाबा ने रात्रि को भी समझाया किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि होती है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं, जब ज्ञान में भी आते हैं तो शूटिंग शुरू होती है ड्रामा की, चारों युगों की क्या, तो चार युग हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार सीन हैं ड्रामा के, लेकिन चार सीन जो हैं उनकी भी तो शूटिंग रिहर्सल रिकॉर्डिंग होती होगी, कभी कब होती है, ये संगम युग में होती है। तो इस संगम युग में जब आत्मा की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो पहले पहले जो आत्मा ज्ञान में आती है तो पहले पहले सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी, जैसे ही ज्ञान में आ जाती है तो पहले पहले सात्विक स्टेज में होती है, अच्छा अच्छा चलते हैं, है? समझते हैं अब हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। क्या जैसे ही ज्ञान में आते हैं सात्विक स्टेज होती है तो क्या समझते हैं अब हम कभी भी विकार में नहीं जावेंगे, पक्का निश्चय करके आते हैं। माने पहले पहले शुरुआत में 100% निश्चय बुद्धि होते हैं, फिर बाद में क्या होता है धीरे धीरे दूसरों के संग के रंग में आते आते दूसरों की बातें सुनते सुनते फिर सतो प्रधान से सतो सामान्य, सतो सामान्य से रजो, रजो से तमो बन जाते हैं। तो पहले समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, हम पवित्र रहेंगे, उस समय शमशानी वैराग्य आता है। कैसा वैराग्य? शमशानी वैराग आ जाता है, दुनिया से बुद्धि हट जाती है, वैराग आ जाता है। फिर वहां घर में जब जाते हैं, पहली बार बाप के पास आते हैं तो इतनी ऊंची स्टेज होती है, फिर जब घर में वापस जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर के बताते हैं ये फलाना फूल है, माली तो जरूर बताएंगे ना, क्या कान में क्यों बताते? उनकी अच्छाई या बुराई उनके सामने नहीं बताएंगे, बाबा के कान में आकर के बताएंगे कि इनमें ये अच्छाई है, इनमें ये बुराई, ये इस तरह के फूल हैं। माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। क्या भगवान की हजार आंखें कही जाती हैं, तो ऐसे थोड़े कि स्थूल को ही हजार आंखें होती हैं। भगवान तो निराकार है, उसको अपनी नाक आंख कान तो होते नहीं है, तो उसको अपने आंख कहाँ से आएगी, बच्चे ही उसकी आंखें हैं। तो जो बच्चे जो अनुभव करते हैं वो आकर के बाबा को बताते हैं, तो ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, मधुबन में ये आए तो हैं लेकिन इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, होशियार होके रहना, इनकी चाल चलन रायल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है, 10-20% सुधरी है और 80% खराब दृष्टि है, मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है, है? शुरुआत भी कहां से होती है? आंखों से शुरुआत होती है। तो माली आकर के बागवान को सब कुछ बताएंगे, बाबा एक एक से पूछते हैं बताओ तुम कैसे फूल लाए हो, एक एक माली से पूछते हैं तुम कैसे कैसे फूल लाए हो, कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के होते हैं, कोई अक के भी ले आते हैं। अक धतूरा का फूल कैसा होता है? है अक का फूल बहुत छोटा होता है और उसमें दुर्गंध आती है, और धतूरे का फूल होता तो बहुत बड़ा है लेकिन दुर्गंध बहुत होती है। तो यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, किससे है, जब माली उनकी उनके गुण अवगुण बताए देते हैं तो यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं, जो आते हैं फूल अगर अक धतूरे के भी आ गए तो बाबा के पास आएंगे तो बहुत खबरदार रहते हैं, फिर वापस जाते हैं तो मुरझाए जाते हैं। बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगाए देती है। क्या जो फूल लाते हैं उन फूल लाने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है, माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको संगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। क्या अगर यहाँ आकर के भी खामियां बनी रही और बाप के सामने आकर के पोता बिल खराब आता रहा तो क्या होगा? बाद में बहुत पछताना पड़ेगा जब रिजल्ट निकलेगी। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए है? कहां लक्ष्मी नारायण सतयुग के आदि के जन्म के है, सारे विश्व के मालिक। तो सारा विश्व का मालिक बनाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा किसी को नीचा लक्ष्य देते हैं क्या? है, सबको क्या लक्ष्य देते हैं? बच्चे तुमको क्या बनना है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। बाबा किसी को ये नहीं कहते कि तुमको प्रजा बनना है कि नौकर चाकर बनना है कि दूसरे तीसरे जन्म का नारायण बनना है, नहीं। एकदम ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य देते हैं बाबा कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा तो लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए आए हैं, उनके बदले हम नौकर बने? ये तो ठीक नहीं। बाबा आए विश्व का मालिक बनाने, राजा बनाने के लिए आया? राजा नहीं, राजाओं का राजा महाराजा बनाने के लिए आया। और हम क्या बन रहे? खामियां करते 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 अंत में हमारा रिजल्ट निकले कि हम दास दासी बने जन्म जन्मांतर के। है, राजघराने में जाके दास दासी बन गए तो क्या फायदा हुआ? तो उनके बदले, राजा के बदले हम नौकर बने, ये तो ठीक नहीं। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं जैसा बाबा बनाना चाहते हैं? ये तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज है रावण। क्या? कांटों के जंगल का बीज है रावण, ये तुम जानते हो। और फूलों के बगीचे का बीज है राम। क्या? फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सब बातें बाप बैठ बताते हैं। क्या बताते हैं? एक तरफ तो मुरली में बता दिया कि राम ही रावण बनता है। क्या बताया? राम ही रावण बनता है। और दूसरी तरफ यहाँ क्या बता दिया? कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है राम। तो कहाँ राम कहें, कहाँ रावण कहें? है, राम और रावण एक ही है या दो अलग अलग हैं? एक ही टाइम पर हैं या ये अलग अलग टाइम पर हैं? है, है? वो तो है कि राम और कृष्ण, उनकी भी तो आत्माएं नीचे गिरती है कि नहीं? नहीं गिरती है जो उनकी भी आत्माएं नीचे गिरती है। तो जब नीचे गिरती है तो नीचे गिरते गिरते जब शिव बाबा प्रवेश करता है तो उनका ऊंचा उठना शुरू होता है या नीचा गिरना शुरू होता है? तब तो वो ऊंची उठना शुरू हो जाती है, उसकी तो बात ही नहीं। अगर बाबा के आने के बाद भी कोई उल्टा कर्म करता रहे, नीचे गिरता रहे, तो सुधर पाएगा? फिर नौकर चाकर बनेगा या राजा रानी बनेगा? फिर तो राजा रानी नहीं बनेगा। तो ज्ञान में आने के बाद की बात नहीं है। राम रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है, ये कब की बात है? है? बाकी जब शिव बाबा जब आते हैं तो राम और रावण दोनों अलग अलग साबित हो जाते हैं। राम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा जब संपूर्ण बनती है तो क्या हो जाता है? वो रावण से राम बन जाती है, परसेंटेज में सुधार होता है और परसेंटेज में बिगाड़ होता है। परसेंटेज में हरेक में विकार होते हैं कि सब में एक जैसे विकार होते हैं, विकार भी सात्विक होते हैं, विकार भी तामसी होते हैं, कोई में तमो प्रधान विकारी होते हैं, कोई सतो प्रधान विकारी होते हैं। तो ये सब बातें बाप बैस समझाते हैं, बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं, वो पढ़ाई फिर भी अच्छी है। कौन सी, स्कूल की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूल की पढ़ाई वो फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। क्या जो भक्ति मार्ग में, भक्ति में लोग चलते हैं उसमें तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। ये भी पाठशाला है, इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नरसे नारायण बनना है। इस स्कूल में जो भगवान स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं, विश्वविद्यालय खोले हुए हैं, इसमें क्या बनाया जाता है? नरसे नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो इसमें भी एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है नरसे नारायण बनने की, भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं, है? लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं होता होगा कि हम ही नर से नारायण बनते हैं, हम ही नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनते हैं, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो। क्या कहा? सच्चे सच्चे ब्राह्मण क्यों हो? क्योंकि सच्चे सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान वाच है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर वो गीता सुनते सुनते 2500 वर्ष से ये गीता सुनते चले आए भक्ति मार्ग में, फिर राजा कौन बना? वो गीता सुनने से राजा कौन बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? मैं खुद नहीं बनूंगा। क्या शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, जो आत्माओं का बाप है, वो क्या कहते हैं? है?
राजा बनाऊंगा,
मैं राजा बनाऊंगा, खुद नहीं, खुद राजा नहीं बनूंगा। अच्छा, जिसमें प्रवेश करते हैं वो क्या कहते हैं? है? वो ताजदारी राजा बनता है कि बेताज बादशाह बनता है? है? शंकर के लिए क्या कहते हैं? बेताज बादशाह। नेहरू जी के लिए क्या कहते थे? नेहरू जी के लिए भी तो कहते थे बेताज, बेताज बादशाह। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी खुद राजा नहीं बनता, खुद क्या रहता है? हमेशा का हमेशा है फकीर का फकीर ही रहता है। लेकिन बच्चों को कंट्रोलिंग पावर देता है सारी दुनिया की। तो तुमको राजाओं का राजा बनूंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा। मेरा अंत तक का गायन क्या है? है? जो संगम युगी नारायण बनता है वो ताजधारी नारायण बनता है कि बेताज बादशाह बनता है? है? बेताज बादशाह बनता है। वो कोई ऐसा ताजधारी राजा नहीं बनता है जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बनते हैं। तो ऐसा कभी सुना कि मैं खुद नहीं बनूंगा, तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, ऐसा कोई है जो कहे? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। जो आते हैं उनमें से बहुत से होते हैं माली हैं, फूल बनाने वाले, और बहुत से हैं फूल बनने वाले, माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली हैं, सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? अच्छा फूल कौन बन सकते हैं? जो सर्विसेबल होते हैं वो फूल बनते हैं, अच्छे फूल बनते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना, कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो अच्छा बगीचा भी बनाते हैं। 1999 की वाणी का तीसरा पेज, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख करके दिल खुश हो जाता है। क्या बाबा का दिल खुश हो जाता है? जैसे मोर जंगल में क्या करने लग पड़ता है, बहुत खुश होता है तो क्या करता है, नाचने लग पड़ता है। तो बाबा भी क्या करने लग पड़ते हैं, ज्ञान की डांस करने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को देख करके दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूलों ले आते हैं तो बागवान बाप समझ जाते हैं, है ये हल्का फूल है, ये क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अभी टाइम पड़ा है, किस बात में? कांटों को फूल बनने में अभी टाइम पड़ा हुआ है, बहुत मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं, कांटे बने रहना ही पसंद करते हैं। क्या कोई न कोई ऐसा कर्म ज्ञान में आने के बाद भी करते ही रहेंगे जो दूसरे को क्या हो, दूसरे को दुख हो, कांटा चुभ जाए। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। कहां से शुरुआत होती है? आंखों से ही। यहां आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती है। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, चाहते तो हैं। जिनको देख करके खुश होता रहूं, देखता हूं कि वृत्ति ऐसी है। क्या कहा बाबा? जिन बच्चों की आंखों की वृत्ति खराब देखते हैं, वाइब्रेशन खराब देखते हैं, इनकी वृत्ति ऐसी है बाबा देखते हैं तो उन पर नजर भी नहीं डालते हैं। क्या कौन सी नजर? इन स्थूल आंखों की नजर नहीं डालते हैं कि तीसरे नेत्र की नजर नहीं डालते हैं? है बाबा की कौन सी दृष्टि की नजर मिलती है? तीसरे नेत्र की नजर मिलती है। तो बाबा नजर भी नहीं डालते हैं, इसलिए एक एक को देखते हैं, ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं बा नहीं बने हैं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो तुम फूल कैसे बनेंगे? कौन कौन कहते हैं कि हम याद में ठहर नहीं सकते, घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे। खुद ही फूल नहीं बने हुए होंगे तो दूसरों को फूल कैसे बनाएंगे? खुद ही अगर अभी ज्ञान में आने के बाद भी कांटे के कांटे ही बने हुए हैं तो दूसरों को भी क्या बनाएंगे? जो जैसा होगा वैसा ही दूसरों को बना, या जिस किस्म का फूल बना होगा उस किस्म का फूल बनाएगा। तो औरों को भी फूल बनाएंगे तब माली नाम रख सकते हैं। क्या कहा? यज्ञ के आदि में भी नाम रखे थे बाबा ने, नाम रखे थे फिर वो काम नहीं किया तो बाबा ने सारी लिस्ट बिगाड़ दी, फिर नाम रखना बंद कर दिया। तो औरों को भी फूल बनाएंगे तो माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं? क्या कहा? बंधन तो छोड़ना चाहिए, माली कौन बन सकते हैं? तो दुनिया के ही राग रंग के बंधनों में बंधे हुए हैं, वो फिर माली बनेंगे? वो नहीं माली बन सकते। पहले क्या करना चाहिए? पहले निर्बंधन होना चाहिए, बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए। कौन से पंख हैं? ज्ञान और योग के पंख हैं, है? तो ज्ञान योग के पंखों से कौन उड़ेगा? निर्बंधन पंछी उड़ेगा, या जिसके पांव बंधे हुए होंगे, जिनके पंख बंधे हुए हैं वो उड़ेंगे? ऊंची स्टेज में तो वो ही उड़ेंगे जो एकदम निर्बंधन हुए होंगे। तो बंधन छोड़ना चाहिए ना, अपने पंख आजाद करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? यहाँ ज्ञान में आने के बाद सबसे ज्यादा प्यार किसमें हो जाता है? बाबा में प्यार हो जाता है। तो जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को भी नहीं बनाया है तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं दुनिया में। जो बड़े बड़े साहूकार जन्म जन्मांतर बनते रहे हैं, उन्होंने वो प्रारब्ध कहाँ बनाई? वो पुरुषार्थ कहाँ किया? जरूर संगम युग में उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है। जो बड़े बड़े राजाएं बने हैं, बड़े बड़े महाराजाएं बने हैं, बड़े बड़े साहूकार बने हैं, तो नंबरवार हैं। कम साहूकार भी हैं और प्रजा भी है, फर्स्ट क्लास प्रजा, तो बहुत ऊंचे ऊंचे साहूकार होंगे। सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी बन जाते हैं कोई। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर बनते रहेंगे क्या? ये सबसे घाटे की बात है और सबसे ज्यादा प्राप्ति की भी बात है। अगर इस कल्प में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग में, यहाँ हम जैसे बन जावेंगे वैसे फिर हर कल्प में, हर चतुर्युग में वैसे ही बनते रहेंगे। तो अब हम क्या बने? अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर बनते रहेंगे। अभी पूरा जोर दे करके पुरुषार्थ करना पड़े। नरसिंह नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो अमल करेंगे। किस बात पर? बाबा की बातों पर अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। अमल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या बताया? रोज अपना पोता मेल लिखो, देखो सारे दिन की मुरादी संभालो, आज हमने क्या घाटा किया और क्या प्राप्ति की। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है, बारह मास की बात नहीं। रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे क्या? रोज अगर घाटा होता रहेगा, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते रहेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबर तो होते हैं ना, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति। क्या ये मनुष्य सस्य रूपी वृक्ष है, इसका बीज कौन है? सारे वृक्ष का पति कौन है? पति है राम, बाप जिसको कहा वो हुआ सारे मनुष्य सस्य रूपी वृक्ष का पति। बाप भी है और पति भी है। पति किसे कहा जाता है, बाप किसे कहा जाता है? सारे वृक्ष की जो रक्षा करता है उसे कहते हैं पति। और जो बीजारोपण करता है उसको कहते हैं बाप। तो बीज है वृक्षपति, जिनके आने से हम बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठती है। किनके आने से? जब राम बाप हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो हमारे ऊपर किसकी दशा बैठ जाती है? बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। जब तक राम वाली आत्मा को, जो सस्य रूपी मनुष्य सस्य रूपी वृक्ष का बीज है, वो उसको बुद्धि में जब तक धारण नहीं किया है, उसको जब तक नहीं पहचाना है, तब तक हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा नहीं बैठती। शनिचर की बैठ सकती है, राहु की बैठ सकती है, मंगल की बैठ सकती है, दूसरे दूसरे ग्रहों की दशा बैठ सकती है, छोटे मोटे ग्रह हैं, लेकिन नवग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति, सबसे बड़ा पति, पतियों का पति। तो हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम बृहस्पति की दशा हमारे पर बैठती है। कहाँ आने से? हमारी बुद्धि में जब वो बृहस्पति राम बैठ जाता है, उसकी पहचान बुद्धि में हो जाती है, तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। फिर रावण राज आता है तो राहु की दशा बैठती है। क्या राम की दशा कब बैठती है? जब हम राम को पहचान लेते हैं, राम की मत पर चलते हैं, तो बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर दूसरों के संग के रंग में रंगने से मनुष्यों की बातें सुनते हैं और मनुष्यों की बातों के प्रभाव में आकर के उल्टी चलन चलने लग पड़ते हैं, तो किसकी दशा बैठ जाती है? कोई न कोई गिरती कला वाले ग्रह की दशा बैठ जाती है, राहु की दशा बैठती है। वो एकदम हाईएस्ट और वो एकदम लोएस्ट। क्या एकदम हाईएस्ट कौन? बृहस्पति। और उनसे नीचे नीचे गिरते गिरते नौ, एक नहीं है, कितने हैं ग्रह? नौ ग्रहों की दशा है। तो एकदम लोएस्ट कौन सी दशा बताई? राहु की दशा एकदम नीची है, एकदम शिवालय से वैश्यालय बनाए देते हैं। क्या राहु ऐसी मत देते हैं? राहु कहाँ से आता है? हैं? राहु कहाँ से आता है? राहु कहाँ बनता है और बृहस्पति कहाँ बनता है? अब ये शनिचर देवता कहाँ बनते हैं? बने कब हैं? अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। क्या उल्टी मत देते हैं तो क्या बन जाते हैं? राहु बन जाते हैं। तो राहु की दशा बैठती है, वो एकदम हाईएस्ट और वो एकदम लोएस्ट, नीचे से नीचा, एकदम शिवालय से वैश्यालय बनाए देते हैं। कौन? राहु। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं बाप के, हैं? हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास, कब जाएं? कैसे फूल आते हैं, हैं? तड़पने वाले फूल कि बाबा के पास हम कब जाएं? कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है, भले माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, कितनी घर में मार खाती हैं, कौन? बांधेली माताएं तो भी कहती हैं कि शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। क्या मार खाती हैं? उनको सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया है वो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना किसने? द्रौपदी ने पुकारा था ना, कल पुकारा था, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियां बताते हैं ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरिया और वो है कीड़ा। कौन? जो माताएं ज्ञान में आ जाती हैं उनके पति ज्ञान में नहीं आते, तो पति तो उनको छोड़ते नहीं है, भिखारी बनाते रहते हैं, तो वो बाबा को पुकारती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने अंदर से इस बात को समझो कि वो है विष्टा के कीड़े, वो है कीड़े, तुम हो भ्रमरिया, उन पर भू भू करते रहो। किस बात की भू भू? ज्ञान की भू भू उनको करते रहो। बोलो भगवान वाच, काम महाशत्रु है, उस काम महाशत्रु को जीतने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। काम जीते क्या कहा जाता है? जगत जीत। 1999 की वाणी का चौथा पेज। कोई समय अबलाओं के बोल पुरुषों को लग जाते हैं तो फिर ठंडे भी हो जाते हैं, इसलिए सदैव भू भू करते रहना चाहिए। कहते हैं अच्छा भले जाओ, पति भी परमिशन दे देते हैं, ऐसा बनाने वाले बाले के पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है तो तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियां पुकारती हैं, बोलती हैं, बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सूपन खा पूतना कहा जाता है, क्या कोई कोई माताएं होती हैं बंधन में हैं, विकारों से छूटने का पुरुषार्थ करती रहती हैं, निर्बंधन होने का पुरुषार्थ करती रहती हैं। कोई फिर माताएं ऐसी भी होती हैं जो है जो नरक का दरवाजा ही खोल के बैठ जाती हैं। पति अगर ज्ञान में चलता है तो उसको क्या करती है? पति को ही टांग पकड़ के खींचती रहती है। तो बाबा कहते हैं तो वो है सूपन खा पूतना। कैसी कैसी? सुपन खा ने क्या किया था? राम के पास जाके विकार मांगा, हमसे शादी कर लो, नहीं मिला तो क्या किया? लड़ाई करवा दी है अपने भाई को जाकर के, रावण को उल्टी उल्टी बातें कह दी कि हमारे ऊपर कुदृष्टि डालता है। बात उल्टी कह दी जाके तो लड़ाई हो गई। लड़ाई कराने वाली को कहते हैं सुपन खा और पूतना। विकार मांगने वाली को क्या कहा जाता है? पूत। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र स्त्री है। पुरुष उनको भू भू करते हैं, वो कीड़ा बन पड़ती है। कोई कोई भाई भी ऐसे हैं कि अपनी स्त्री को जो सूपन खाए पूतनाए हैं उनको भू भू करते रहते हैं, क्या बनाने के लिए? विकारी स्त्री से निर्विकारी बनाने के लिए। वो कीड़ा बन पड़ती है, विकार बिगर रह नहीं सकती। भगवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। ये तो माताओं की बात हुई, भाइयों की बात हुई, अब किसकी बात बताई? कोई कोई कन्याएं भी ऐसी होती हैं कांटा बन पड़ती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री बताओ। क्या हाँ, कन्याओं से भी पूछते हैं उनकी जन्मपत्री, पोता मिल पूछते हैं, तो भाइयों से भी पूछते हैं, तो माताओं से भी पूछते हैं। बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री बताओ, बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वो वृद्धि होती जाएगी। क्या कहा? झूठ चल नहीं सकेगा। कोई अगर बाप को आकर के झूठा ही पोता मिल दे दे तो वो चल नहीं सकेगा और दिन दूना रात चौगुना नीचे ही गिरता जाएगा। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी अगर तुम अपना सच्चा पोता मिल बाप को नहीं देंगी। महारोगी बन जाएंगे। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे तो सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बनाए दिया है, राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। क्या राम भी काला, कृष्ण भी काला और नारायण को भी काला बनाए दिया है, अर्थ कुछ नहीं समझते। काले का मतलब नीचे गिरने वाला कांटा। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारे पास गोरा है, तुम्हारी तो ये अहम ऑब्जेक्ट है कौन सी, गोरा नारायण बनने की, काला नारायण बनने की तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है क्या? कौन सा नारायण बनने के लिए मना किया? काले मुंह वाला नारायण बनने के लिए मना किया, काला कृष्ण काले मुंह वाला कृष्ण बनने के लिए मना किया है, क्या बनने के लिए बोला है? गोरे मोड़े वाला कृष्ण बनने के लिए बोला है। ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं, कैसे
काले।
इतने काले मुंह वाले देवताएं कोई थे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है, काली कलकत्ते वाली कहते हैं, क्या कहा है, क्या कहते हैं, कहाँ की कलकत्ते की, काली कलकत्ते वाली कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई है, किसने दिखाई है ये भयंकर शक्ल, किसने दिखाई है, है? काली की भयंकर शक्ल किसने बनाई, भक्तों ने ही बनाई होगी ना, हाँ, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला हुआ है, अच्छा मीठे मीठे सिकिल लिए बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते ओम शांति।